तारा परी शादी के लिए हाँ कह देती है, और वहीं दूसरी ओर वो काली शक्तियों का मालिक अपनी शक्तियां आसमाने के लिए गरीब लक्कड़हारों को अपना निशाना बनाता है। और उन लक्कड़हारों में एक बड़ी प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम प्रेमा था। उस काली शक्तियों के मालिक की काली नज़र उस बेचारी लड़की पर पड़ जाती है और वो उसको उसके कपड़े उतारने पर मजबूर कर देता है। फिर उसी के परिवार के सामने उसे न्यूट कर देता है और उसे वही पास के पेड़ के पीछे ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। उस लड़की की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। इस वक्त काली शक्तियों का मालिक अपनी शक्तियों के घमंड में बिल्कुल चूर था। वो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा था। वो सोचता था कि अब वो इस दुनिया का मालिक है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके बाद वो काली पहाड़ी पर अपने गुरु से मिलने जा पहुंचा था और उसने वहां जाकर अपने गुरु को तिलिस्मी पत्थर लेकर आने का वादा किया। और वापस जाते हुए वो सर्प महाराज के तंबू के पास से होकर गुजरा और उसने सोचा जाने से पहले एक बार सर्प महाराज से मिल लिए जाएं। ये सोचकर वो बिना नॉक किए उसके तंबू में अंदर चला गया था। लेकिन उस वक्त वो सर्प महाराज अपनी अर्धांगिनी को आलिंगन में लिए हुए थे और उन दोनों के जिस्म पर नाम मात्र को ही कपड़े थे, और इंसानी रूप में वो नागिन बेहद आकर्षक लग रही थी। वो काली शक्तियों का मालिक ललचाई सी नज़रों से उसे घूरने लगा था। उसे इस तरह से घूरता देख सर्प महाराज का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और वो उस काली शक्तियों के मालिक पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने ही वाला था कि तभी एक उस पहाड़ी पर एक कंपन सा पैदा हो चुका था। इसका मतलब साफ था, तिलिस्मी पत्थर के रक्षक अमन और मान की जिंदगी में कोई लड़की आ चुकी थी। उस काली शक्तियों के मालिक को इस बात का एहसास हो चुका था और वो अब उस नागिन पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद वो नागिन जो सर्प महाराज के पीछे छुप गई थी, वो उसे अपने पति के आमने सामने आई और बोली, ये क्या महाराज, आपने उस नीच को ऐसे ही जाने दिया? क्यों, आपने देखा नहीं कितनी गंदी नज़र से वो हमें देख रहा था? तब सर्प महाराज बोले थे, मैं जानता हूँ प्रिया, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। बहुत जल्द उसका सर्वनाश होगा और जिस वक्त उसका सर्वनाश होगा मैं भी वहां मौजूद रहूंगा और अपनी आंखों के सामने उसका सर्वनाश होते हुए देखूंगा। ये सुनकर उस सर्पनी को कुछ राहत हुई और वो एक बार फिर अपने पति से चिपक गई और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। और सर्प महाराज ने अपनी अर्धांगिनी को भरपूर प्यार जताया था। वहीं दूसरी ओर करिश्मा जी अमन और मान को तारा की शादी के लिए तैयार होने का बता देती है और वो दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन न जाने क्यों अमन का मन उदास हो जाता है। उसे सब कुछ गलत लग रहा था। भला दो लड़कों के साथ एक लड़की कैसे रह सकती थी और वो कैसे उन दोनों को बराबर प्यार कर सकती थी, जबकि उन दोनों भाइयों में तो जमीन आसमान का फर्क था। भले ही उनकी रूह एक हो लेकिन उनका जिस्म, उनका स्वभाव, सब कुछ तो अलग अलग था। कैसे हो पाएगा सब कुछ? वहीं तारा परी अपने कमरे में आकर आराम से लेट गई थी, तभी उसे खिड़की के पास किसी के होने की आहट सुनाई दी। तारा परी को किसी के वहां होने का अंदेशा होने लगा था और वो ये देखने के लिए कि खिड़की के पास कौन है, उसने देखा बाहर वो ही काली बिल्ली बैठी हुई थी। तारा परी अब उस बिल्ली का वहां होने का मतलब समझ चुकी थी। उसे ये तो पता था कि काली शक्तियां इतनी आसानी से उसकी शादी नेक दिल इंसानों से नहीं होने देगी, लेकिन ये अब इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? वो बिल्ली तारा परी को घूर कर देखने लगी थी। उस काली बिल्ली जो कि मल्लिका थी, उसने सोचा क्यों ना तारा को अपने वश में करके यहाँ से भगा दिया जाए या उसे कुछ ऐसा काम करने के लिए उत्साहित किया जाए जिससे अमन और मान के दिल में तारा के लिए नफरत पैदा हो जाए। ऐसा ही मल्लिका ने अपने काली शक्तियों के मालिक के कहने पर खुशी, जो कि अमन की पहली प्रेमिका थी और जिससे अमन की शादी होने वाली थी, मल्लिका ने उसे भी अपने वश में करके उसे इसी के ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के के साथ सोने के लिए मजबूर कर दिया था और अमन को दिखा भी दिया था, जिसके बाद से अमन के दिल में औरत के लिए नफरत पैदा हो गई थी। इसलिए मल्लिका ने सोचा, जो ये लड़की अब इनकी जिंदगी में आई है उसे कैसे बाहर निकाला जाए, इसको किसके साथ सुलाया जाए, क्योंकि ये तो अब कहीं काम ही नहीं करती है, लेकिन इसे वश में तो करना ही होगा। तब जैसे कि तारा परी मल्लिका को ही देख रही थी, जो कि एक काली बिल्ली के वेश में थी, सो उसने अपने उसी रूप में अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली थी और वो अब और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मल्लिका ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तारा को घूरना शुरू कर दिया था और साथ ही वो कोई मंत्र भी पढ़ने लगी थी। तारा परी समझ चुकी थी कि ये काली बिल्ली क्या करने जा रही है। फिर कुछ सोचकर तारा परी ने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया था मानो वो उसके वश में हो गई हो। और जब उसे यकीन हो गया कि तारा अब उसके वश में है, तो वो उस खिड़की से अंदर उसके कमरे में आ गई थी और आते ही उसने अपना असली रूप धारण कर लिया था। तारा परी बेसुध सी होकर उसे देखे जा रही थी, क्योंकि उसे अभी एक्टिंग करनी थी और ये पता लगाना था कि आखिर काली शक्तियों का मालिक है कौन, जो इंसानी वेश में रहकर अमन पर नजर रख रहा है और मौका देखते ही उसे धोखा देने वाला था। तभी उस काली बिल्ली यानी मल्लिका ने तारा परी को हुक्म दिया कि बेड पर बैठ जाओ। तारा परी बेड पर बैठ गई। तारा परी के बैठते ही वो हंसने लगी और बोली, आज तो मालिक मुझसे जरूर खुश होगा, क्योंकि मैंने रक्षकों की होने वाली बीवी को अपने वश में कर लिया है। अब ये मेरे वशीकरण में है। अब तक तो मालिक काली पहाड़ी पर से आ गए होंगे। मैं अभी जाकर उन्हें ये खुशखबरी दूंगी। लेकिन अब ये शादी तोड़ने के लिए क्या करूं? यहाँ तो कोई लड़का ही नहीं है जिसके साथ मैं इसे सुला सकूं। वेल, एक काम करती हूँ, कल किसी लड़के को लाकर इसके साथ सुला दूंगी और मान और अमन को दिखा दूंगी। फिर वो अमन तो गुस्से में आकर इसे निगल ही जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। ये कहकर वो हंसने लगी थी। वहीं तारापारी उसकी मूर्खों वाली बात सुनकर मन ही मन हंस रही थी। तभी उस मल्लिका ने तारापारी को एक और हुक्म दिया कि तुम अब सो जाओ, मैं कल बताऊंगी तुझे क्या करना है। जैसे ही मल्लिका ने हुक्म दिया, तारापरी अपने बेड पर जाकर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मल्लिका को लगा तारापरी अब सो चुकी है, तो वो वापस अपने बिल्ली वाले रूप में आ गई और अपने मालिक को ये खुशखबरी देने के लिए उसके घर की ओर बढ़ गई। उसके जाने के बाद तारापरी उठकर बैठ गई और बोली, मूर्ख बिल्ली, अब देख तेरे ही खेल में मैं तुझे कैसे हराती हूँ। वहीं दूसरी ओर अमन बेचैन था, तो वो तारापरी से मिलने के लिए उसके कमरे में का पहुंचा था और तारापरी को खिड़की के पास देखकर वो वहीं चला गया था और पीछे से उसने तारा को आवाज लगाई थी। मिस तारा, अमन की आवाज सुनकर तारा पहचान गई थी कि ये अमन है। फिर भी वो एक्ट करती हुई बोली थी, आप कौन है, अमन सर या मान सर?
तारा अभी अपनी इंसानी एक्टिंग नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, वो उसे तो क्या किसी के भी सामने अपना सच नहीं आने दे सकती थी। तारा का सवाल सुनकर अमन थोड़ा खींच सा गया था और बोला, मिस तारा, मैं हूं अमन, अमन सिंह राठौड़। ओह तारा, जी जी सर, आप यहाँ कुछ काम था? तारा परी थोड़ा डरते हुए से बोली थी। तब अमन, देखिए मिस तारा, मैं यहाँ आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि अगर आप किसी दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कह रही हैं, तो आप ये शादी ना करें। तब तारा परी मन ही मन, ओह नो, ये क्यों बार बार मेरी मुश्किलें बढ़ाने आ जाता है, आखिर ये चाहता क्या है? तब तारा परी ने अपने आप को मजबूत करते हुए कहा, अमन सर, मैंने किसी भी दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। देखिए सर, मैं एक अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कल को अगर मैं सड़क पर रहते हुए मर जाती या किसी जालिम मर्द की हवस का शिकार हो जाती, कोई नहीं था मुझे पूछने वाला। और ऐसे में और इस मर्दों से भरी दुनिया में आपने मुझे काम दिया, रहने के लिए घर दिया, सहारा दिया, और इससे ज़्यादा भला एक अनाथ को और चाहिए। और वैसे भी सर, मेरे ऊपर किसी ने किसी दबाव नहीं बनाया है, मैं अपनी मर्जी से आप लोगों के घर का, आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। और अगर मेरे शादी करने से आप लोगों पर आई कोई मुसीबत टल सकती है, तो इससे अच्छा मौका मुझे और कहाँ मिलेगा आप लोगों के एहसानों को चुकाने का। तारा परी ने जैसे एक ही सांस में अपनी बात ख़त्म की थी। वहीं अमन, जो इस गिल्ट में जिए जा रहा था कि तारा ज़रूर किसी मजबूरी में ये फ़ैसला कर रही है, तन उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, लेकिन अब उसकी बातें सुनने के बाद काफ़ी हद तक उसके सर का बोझ कम हो चुका था और वो मन ही मन बोला था कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, कभी दुख को तुम्हारी करीब भी नहीं आने दूंगा। अमन, ठीक है, तुम आराम करो, अब हम सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। ऐसा कहकर अमन अपने कमरे में चला जाता है। वही मान, जो कब से खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसके दिल से भी एक बोझ सा उतरता हुआ महसूस होता है, क्योंकि वो भी तारा से यही बात करने के लिए आया था जो उसके भाई ने की थी। अब वो भी अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा था और अमन के तारा के कमरे से निकलने से पहले पहले वो वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। तारा मान के वहाँ होने का एहसास कर चुकी थी, इसलिए उसने जो भी कहा था थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा था, ताकि दोनों भाई अच्छे से सुन ले, क्योंकि वो बार बार ये इंसानी जज्बाती लाइनें नहीं बोल सकती थी। वेल, अब तारा परी को कल का इंतज़ार था, वो देखना चाह रही थी कि कल वो मल्लिका क्या चाल चलेगी। गाइज़, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स प्लीज़।